अब एक बात बता रहे हैं 89 नंबर का श्लोक में, आत्मानं सततं जानन कालं नय महाद्युतेः प्रारब्धं अखिलं भुंजन नोद्वेगं कर्तुम अर्हसि। कि आत्मानं सततं जानन, आत्मा को सतत जाने, हमेशा आत्मस्मृति रहे, इसका नाम है आत्मानं सततं जानन। ये आत्मा को सतत आप कैसे जान सकते हैं, तो उसके लिए बताया वेदांत वाक्य ही विचारयन कालम नया, ऐसा बता दिया भाष्यकार ने। वेदांत वाक्यों के विचार करते हुए जीवन का समय बितावे, क्योंकि जहां व्यक्ति थोड़ी विषयों का विचार करने लगता है तो फिर व्यक्ति जो है ना उलझ जाता है, और संस्कार के हिसाब से वो अपने जीवन को देखने लगता है, जीवन दर्शन संस्कार के आधार पर उसका बन जाता है। जैसे कभी उदाहरण देते हैं आपको कि रावण के पास में सुर्पणखा गई और सुर्पणखा से रावण ने पूछा कि तुम्हारे नाक कान कैसे कट गए, तो उसने कहा मेरे नाक कान जो है तुम्हारी शादी के चक्कर में कट गए। बोले मेरी शादी के चक्कर में कैसे कट गए भाई? रावण की एक मान्यता है, जब आदमी की मान्यता पे ठेस लगती है, यदि वो समझदार है तो अपनी मान्यता बदलता है, और यदि वो नासमझ है तो उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसने वहां जो बात कही, उसने कहा तू यहां लंका में बैठा है, कितने तूने पुण्य की, सोने की लंका तेरे पास है, और पुण्य के साथ साथ में तू सामर्थ्यवान है, पुण्यवान है और सामर्थ्यवान। जब आदमी पुण्यवान और सामर्थ्यवान होता है तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु पे उसका नैतिक अधिकार होता है, वो समझाती है कौन? अच्छा, मंदोदरी के बारे में कहीं बहुत स्पष्ट नहीं है, यदि आपको मंदोदरी के बारे में स्पष्ट पढ़ना हो कुछ तो अध्यात्म रामायण देखिए। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में बैठे हैं, वो कहते हैं सुर्पणखा कोई स्त्री नहीं है, सा काम स्वरूपणी स्यात्, वो साक्षात काम का प्रतीक है, और कामी व्यक्ति स्वेच्छाचारी होता है, उसकी अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं होता। उसने रावण के पास में जाके कहा दुनिया में ऐसी कोई खूबसूरत औरत नहीं है जो सीता के सामने खड़ी भी हो सके, लेकिन वो तपस्वियों के साथ में अच्छी नहीं लगती, वो तो यहीं अच्छी लगती है तेरे महल में। अच्छा, जब वो राम के पास में गई उस समय वहां ऐसा उल्लेख है, उस समय भगवान रामचंद्र जी सीता की तरफ देख रहे थे, और वो एक बात कह रही थी कि तुम सम पुरुष मो सम नारी विधि या संयोग रचा विचारी। तो जो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, मानस पीयूष करके ग्रंथ है, उन्होंने लिखा है, रामचंद्र जी ऐसा सोच रहे थे कि ये सीता बोल रही है, क्योंकि सीता को राम के लिए बना गया गया और राम को राम की दृष्टि सीता पे थी, वो अपने लिए बोल रही थी, लेकिन रामचंद्र जी क्या समझ रहे थे, राम के सामने वो ये कह रही थी कि मेरे जैसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, और रावण के सामने जाकर के कहने लग गई क्या कि सीता के जैसे सुंदर कोई नहीं है। देखो जीवन में गलत व्यक्ति सफल तब होता है जब वो आपकी कमजोरी को जानता है, इसलिए अपने दिल की बात सबको बतानी भी नहीं चाहिए। सूर्पणखा राम की कमजोरी जानती है, अब जब वो सीता का चिंतन करता है, आप लोग सुनते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते। विषय का स्मरण नहीं, विषय का संग चाहिए। और मंदोदरी उसको समझाती है, लेकिन मंदोदरी की किसी बात का उसके ऊपर असर नहीं होता, लेकिन सूर्पणखा की बात उसको बहुत अच्छी लगती है। मनुष्य अपनी वासनाओं के हिसाब से सुनना पसंद करता है। डॉक्टर जो है ना, जो आप चाहते हैं वो कभी आपको नहीं देता, आपके लिए क्या उपयोगी है वो आपको देता है, आपके लिए जरूरी क्या है आप जो चाहते हैं वो नहीं देता वो कभी भी। फिर विषय का संग करने के लिए फिर वो क्या सहारा लेता है वो आपको मालूम पड़ गया, फिर वो जितना काल वहां जो वर्णन आता है, फिर वो जब सीता जी के रूप का चिंतन करता है उसकी प्राप्ति के लिए, फिर वो क्योंकि देखो बुद्धि में एक बार जब विषय का महत्व बैठ जाता है, जिस चीज का महत्व आपके दिमाग में बैठ जाएगा उस चीज को पाने के लिए आप सतत प्रयास करते हैं। कथा सुनने के लिए क्यों कहते हैं, कथा सुनने के लिए इसीलिए कहते हैं कि आपकी बुद्धि में परमात्मा का महत्व बैठे, और जिस चीज का महत्व एक बार आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया उस चीज को पाने के लिए फिर आप प्रयत्न अपने आप करने लगते हैं। लेकिन जब तक उस चीज का महत्व नहीं है, अच्छा आप कभी यात्रा करते होंगे, कभी और यात्रा जब करते हैं भूख लग गई, फिर आप चारों तरफ फिर देखते हैं कहां भोजन मिलेगा, क्योंकि उसकी जिज्ञासा आपको है, उसके बिना आपका जीवन नहीं चल रहा है, तो आप उस चीज को पाने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार से जब वेदांत आप श्रवण करते हैं तो वेदांत श्रवण करने से आपको आत्मा के महत्व का बोध होता है, और जिसके महत्व का व्यक्ति को बोध हो जाएगा फिर उस चीज को पाने की व्यक्ति चेष्टा करता है। वही आचार्य बता रहे हैं, उसके लिए वेदांत वाक्यों का विचार करके काल को यापन करना चाहिए। अब जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद अब ये बता रहे हैं ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। आप सुन लो अभी क्या बोलते हैं, 90 नंबर का सूत्र है। उत्पन्ने पि आत्मविज्ञाने प्रारब्धम नैव मुच्यति इति श्रूयते शास्त्रे तन्निराक्रियते अधुना। भाष्यकार लिख रहे हैं उत्पन्ने पि आत्मविज्ञाने, जिस व्यक्ति को आत्मा का विज्ञान उत्पन्न हो जाता है, आत्मा का विज्ञान, ज्ञान नहीं बोला विज्ञान बोला, जिसको आत्मा का अनुभव हो जाता है, प्रारब्धम नैव मुंचति, प्रारब्ध उसका पीछा नहीं छोड़ता। इति श्रूयते शास्त्रे, ऐसा शास्त्रों में सुना जाता है। बात तो सीधी सीधी अभी चल रही है, कोई टेढ़ी बात नहीं है अभी है। तन निराक्रियते अधुना, शंकराचार्य कहते हैं भी उस चीज का खंडन कर रहे हैं। ये प्रारब्ध और आरब्ध कुछ रहता वहता कुछ नहीं है, दूसरे की दृष्टि में रहता है लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में नहीं रहता। एक है तो श्लोक बहुत अच्छा है, आगे ली। अब देखिए 91 नंबर का श्लोक क्या बता रहे हैं। तत्वज्ञान उदयात ऊर्ध्वम प्रारब्धम नैव विद्यते देहादीनाम असत्यत्व यथा स्वप्नो विबोधतः। ये आचार्य ने बताया तत्वज्ञानात ऊर्ध्वम, जब आदमी को तत्व का ज्ञान हो जाता है, तत्व का ज्ञान हो जाता है, प्रारब्धम नैव विद्यते, प्रारब्ध फिर नहीं रहता। देहादि नाम असत्यत्वात्, क्योंकि देहादि असत्य हो जाते हैं, यथा स्वप्नों विबोधतः, जैसे जगने के बाद सपने सब झूठे हो जाते हैं, जगने के बाद सपने झूठे। कभी हमने इसके ऊपर आपको बताया भी है, क्योंकि स्वप्न की जो सत्ता है वो प्रातिभासिक सत्ता है और जगने की जो सत्ता है वो व्यवहारिक सत्ता है। प्रातिभासिक सत्ता सत्य तभी तक मालूम पड़ती है जब तक आप व्यवहारिक सत्ता के साथ में जुड़ नहीं जाते। व्यवहारिक सत्ता से जुड़ते ही प्रातिभासिक सत्ता कहां चली जाती है कुछ पता नहीं चलता। और शायद आप भी समझदार हैं, इतने दिन से सुनते हैं, जितने सपने आपने देखे हैं जगने के बाद आप ये बोल सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं कि जो मैं देख रहा था वो था ही नहीं, लेकिन वो था नहीं ये आप तभी बोल सकते हैं जब आप जग जाओ। जगे बगैर नहीं बोलना, शास्त्रकार कहते हैं संसार के सुख में यदि आसक्ति है, और फिर बोलता है मैं ब्रह्म हूं, है वो ब्रह्म, लेकिन संसार के सुख में यदि आसक्ति है उसकी, तब तो समझ लो उसकी हालत ऐसी है, ग्रहम दारुम ध्याम धृत्वा नदीम तर्तुम सैच्छति, वो मगरमच्छ को नौका समझ करके नदी पार करना चाह रहा है। अब आप विचार कर लीजिए, कोई मगरमच्छ में नौका समझ के उसको तुम पार जाओगे तो पार ले जाएगा आपको, बीच में ही कोई डकारोकार ले लेगा। ऐसी ही है, जिस आदमी की देह आत्मबुद्धि है, संसार के विषयों में आसक्ति है, मान प्रतिष्ठा के जाल में उलझा हुआ है, सुबह से शाम तक तीन तिकड़म करता है और फिर बोलता है मैं तो ब्रह्म हूं। है ब्रह्म, लेकिन उसके पहले इनकी असत्यता समझना, सपना झूठा है लेकिन उसके लिए जगना जरूरी है। ये है कि तुम देख रहे हो, देखने से कोई सच्चा नहीं हो जाता, लेकिन जो देख रहा है उसके लिए सच्चा है वो। इसलिए आचार्य का एक वाक्य ध्यान में, तत्व ज्ञानात ऊर्ध्वम, तत्व ज्ञान हो जाने के बाद जब तक न हो तब तक कुछ नहीं है, हो जाए फिर कोई बात नहीं है। जब कृष्ण ने अपनी आंखें अर्जुन को दी, आंखें दी तो उसने कहा देख मेरी आंखों से, तू देख क्या क्या तेरे को दिख रहा है जरा बता मेरे को। तो उसने जो बोला है, आप कभी गौर से नहीं पढ़ते हो, कुछ धंधा बड़ी गौर से करते हो, अध्यात्म बिल्कुल गौण है। उसने कहा जरा देख क्या दिख रहा है तेरे को। तो जो उसने बोला है, भीष्म द्रोण और जयद्रथ सूत पुत्रस तथा सौ सहस्मदीय रपियोद मुख्य, ही कृष्ण मैं देख रहा हूं भीष्म मर रहे हैं, द्रोणाचार्य मर रहे हैं, जयद्रथ मर रहे हैं और सूत पुत्र मैंने अर्जुन मर रहा है, करण सूत पुत्र मैंने करण करण मर रहा है। देखो ये सच्चा आपको ज्ञान है तो झूठा आप सुन नहीं सकते। मेरे मुंह से गलती से निकला आपको कैसा लग गया, क्योंकि एक सत्य का बोध है। जब आदमी को सत्य का बोध होता है तो असत्य आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है। ये आदमी का स्वभाव है। उसने कहा क्या दिख रहा है तेरे को, बोले देखो मेरे को दिख रहा है। कौन कौन मर रहा है, बोले पहले भीष्म मर रहा है, फिर बोले कौन मरा, बोला द्रोणाचार्य मरा। जबकि भीष्म और द्रोणाचार्य की मृत्यु के बीच में अभिमन्यु की मृत्यु हुई। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अर्जुन को कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु नहीं दिखाई, यदि शायद अभिमन्यु की मृत्यु श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते तो महाभारत का परिणाम कुछ और होता, लेकिन उसे दिखाया ही नहीं। उसने तो सीधे ही कह दिया ये मर रहे हैं, तो कृष्ण ने कहा अब गाड़ी ठीक चल रही अभी है। अरे भाई, जब भीष्म और द्रोणाचार्य को कृष्ण मार रहे हैं तो अभिमन्यु को कौन मार रहा है? मौत का तो एक रूप कृष्ण भी है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं जो उसका सबसे घनिष्ठ मित्र है। और युद्ध के मैदान में वो जिज्ञासा करता है कि तुम कुछ अपने बारे में तो बताओ, वहां वो बोलता है लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता, अपनी हकीकत बताता है, अभिमन्यु की मृत्यु नहीं देखता। तो उसने कहा ठीक है फिर तो गाड़ी चलेगी, अब यदि अभिमन्यु की मृत्यु देख लेता तो थोड़ी उलझन पैदा हो जाती, ईश्वर सब कुछ तुम्हें आंखें भी दे देना तो तुम्हारे ऊपर फिर भी ईश्वर का अधिकार रहता है। तुम वही देख सकते हो जो ईश्वर चाहे ये देखे, जो ईश्वर न चाहे, चाहे तुम ईश्वर की आंख भले ही ले लो, लेकिन तुम वो नहीं देख सकते जो ईश्वर नहीं चाहता। यही तो है तत्वज्ञान उदयात ऊर्ध्वम। उदय हो, तत्वज्ञान उदय हो जाए, प्रकट हो जाए, आचरण में आ जाए, प्रारब्धम नैव विद्यते, प्रारब्ध खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बोले दिखाई तो देता है ज्ञानी भोग रहा है, भोगते हुए दिखाई देते हैं। बोले वो तुम देखते हो, हम देखते हैं, उसकी दृष्टि में वो है नहीं, उसकी उसके प्रति असत्य बुद्धि हो चुकी है। अच्छा क्यों? तो दृष्टा उत्तर दे रहे हैं, देहादि नाम असत्यत्वात्। देहादि असत्य हैं ये वो समझ चुका है। लेकिन कृष्ण ने एक बात गीता में बड़ी महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। बड़ी प्यारी बात कहते हैं ये, अनित्यम असुखम इमं लोकम, अनित्य लोक को पाके तुम नित्य परमात्मा का भजन कर सकते हो, असुखम ये दुखालय संसार को पा करके आप परम सुख की प्राप्ति कर सकते हो, अनित्यम असुखम ये को प्राप्त, ये नित्य की प्राप्ति के साधन बन सकते हैं, ये नित्य की प्राप्ति के लिए उपयोगी हैं। लेकिन यदि आप इनका सही सही उपयोग करें तो, उपयोग नहीं गलत करते हैं तो बड़े अच्छा उदाहरण आगे दे दिया। देखो स्वप्नो यथा विबोधतः, जैसे जगने के बाद स्वप्न की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कभी आपने गौर से पढ़ा होगा, बड़े बुद्धिमान हैं आप लोग भी, बुद्धिमान तो हैं कि नहीं है? सुबह सुबह 7:30 बजे यहां आते हो तो तुम मूर्ख तो नहीं हो, बुद्धिमान कितने हो वो अलग बात है, लेकिन मूर्ख तो नहीं हो सकते बिल्कुल भी, कुछ तो समझ है पकी हुई। यदि समझ नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। आप विचार करके जब देखते हैं संसार के विषय वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, तो कभी आप भी तो बैठ के विचार करते हैं कि हाथ में क्या है अभी तक, क्या है ऐसा जो हाथ में आ जाए, कुछ नहीं आता। हमने बहुत सारी जगह देखा है महाराज, तुम तो देखो संसार का स्वभाव एक जैसा है। यदि संसार के व्यवहार से आप उठ जाओ, ऊपर उठ जाओ, तो आप सन्यासी हो, और सन्यासी संसार के विषय में उलझ जाए वो भी ग्रस्त जैसा है। बात तो खाली ऊपर उठने की और फंसने की है, बात नाम से तो कुछ नहीं होता। बहुत गहराई से जब व्यक्ति विचार करता है, विचार करने के बाद उसको पता लगता है कि आखिरकार जीवन का सही सही उपयोग क्या है, जीवन है किस चीज के लिए। इसलिए कृष्ण ने उत्तर दिया कि अनित्य है, असुख है, लेकिन ये नित्य और सुख को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन साधन का उपयोग आपको कर लेना है। कृष्ण ने एक उत्तर दिया बड़ा अच्छा, एक क्या उनके सूत्र इतने अच्छे हैं, वो कहते हैं शक्नोति इहेव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम बेगम सयुक्त स सुखी नरा। कृष्ण कहते हैं शक्नोति यह इहेव सोढ़ुम, शरीर के छूटने के पहले पहले कर लेना कुछ, सड़ने के पहले आम खा लेना, सड़ने के बाद नहीं। वस्तु एक नियत काल के लिए आपको मिली हुई है, बचपन एक नियत काल के लिए मिला है, जवानी आपको एक नियत काल के लिए मिली है, क्योंकि प्रकृति देखो, ये प्रकृति समय का निश्चय करती है। एक स्त्री बच्चे पैदा कब तक कर सकती है और कब से कर सकती है, एक पुरुष कब तक ये कर सकता है, एक प्रकृति ने नियम बनाया है। उसके बाद प्रकृति आपको रिजेक्ट कर देती है, जैसे दवाई होती है ना, दवाई की एक्सपायरी डेट होती है। एक नियत काम है, उस नियत काम को आपको उतने समय के बीच में ही करना पड़ता है, समय के बाद उस काम के लायक प्रकृति आपको नहीं छोड़ती। इसलिए प्रकृति सोचो तो बड़ी दयावान है और प्रकृति सोचो तो बहुत क्रूर है। ये जब इसका विकराल रूप आप देखो तो बहुत विकराल है, और जब दया का रूप देखो तो बहुत। कभी आप सेब के बगीचों में चले जाओ, क्या सेब पड़े हुए हैं, कभी हिमालय में ठिठुरते बंदर आदमी, भयंकर बर्फ पड़ती है, सब प्राणी तड़प तड़प के मर जाते हैं, प्रकृति के अंदर दया नहीं आती है। तो प्रकृति ने एक नियत काल करके रखा हुआ है, उस नियत काल में ही आपको उसका उपयोग करना है। कृष्ण कहते हैं शक्नोति यह इहेव सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम। ये काम और क्रोध, इसका जो वेग है ये आदमी की जवानी को बहा करके ले जाता है, और जो उस वेग को सहन कर लेता है, आज भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बिजली कौन से डैम में पैदा होती है, मार बता सकते हो आप लोग? किसमें होती है, चलो बता दो आप। सबसे ज्यादा बिजली टेहरी डैम में पैदा होती है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा डैम वही है। नेट पे सर्च कर लेना, आप विचार करो। ये वेग, पानी के वेग को रोका, और उस वेग को रोकने के बाद लाखों घर में रोशनी हो गई, लाखों घर में पीने का पानी पहुंच गया। तो रोकने के बाद प्रकृति तुम्हारे अनुकूल चलने लग गई, और प्रकृति का आपने उपयोग कर दिया अपने सुख के लिए। लेकिन कभी ऐसा मत सोच लेना प्रकृति हमारे नियंत्रण में आ गई। ये तो मैंने खाली दृष्टांत दिया कि हम वेग को रोक लेते हैं तो हमारे कितने बड़े काम उससे बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं काम क्रोधोद्भवम बेगम। कृष्ण के सूत्र कैसे केमिस्ट्री के सूत्र होते हैं ना, ऐसे सूत्र हैं वो। शक्नोति यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के छूटने के पहले पहले आपको ये सब करना है। उसके बाद फिर क्या कर सकते हो? आप भी अनुभव करते होंगे, नहीं अनुभव करते हैं? अब लगता है कि कुछ कामों से प्रकृति ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, अब वो काम आपके लिए रहे ही नहीं। लेकिन कभी आप उसके काबिल थे? इसी प्रकार से इन दो चीजों के वेग को जब मनुष्य रोक लेता है, काम क्रोधोद्भवम वेगम, कृष्ण कहते हैं आगे सयुक्तः, जो काम और क्रोध के वेग को रोक लेता है वो युक्त हो जाता है। और युक्त शब्द की व्याख्या मैंने आपको बताई थी, युक्तः कर्म फल त्यागी, जो काम और क्रोध के वेग को रोक लेता है वो व्यक्ति इस लोक के किसी सुख की अपेक्षा नहीं करता। जब तक काम और क्रोध आपके अंदर है, क्योंकि क्रोध स्वयं कोई चीज नहीं है, क्रोध जो है ना वो परिणाम है किसका? काम की पूर्ति न होने का। जो आप चाहते हैं यदि वही होता रहे तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में कभी क्रोध नहीं आएगा। क्रोध तो तब आता है जब कामना की पूर्ति नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं सयुक्तः, युक्तः कर्म फल त्यागी, जो फल की तरफ नहीं देखता उसको सदा रहने वाली शांति मिलती है। शांतिम आपनोति नैष्टिकम्, मैंने हमेशा रहने वाली शांति। और काम और क्रोध से मिलने वाली जो शांति होती है वो दो मिनट की होती है, लेकिन सदा रहने वाली शांति यदि पानी है तो इनको, इनके वेग को जीतना पड़ेगा। अच्छा, आदमी हैं बड़े काम के, वो बहुत गहराई से समझाते हैं, और कभी आपको समझाया भी था, उन्होंने काम क्रोध का तिरस्कार नहीं किया। हमने कभी आपको दृष्टांत भी दिया था कि पंजाब में पहले 5 नदियां बहती थी, इसलिए द्रौपदी जी का नाम पंचाली था। पूरे प्रांत को हरा भरा, सबसे ज्यादा गेहूं वहीं पैदा होता था, अनाज पैदा होता था, खेती है। मैंने कहा ना, खेती में पक्षपात नहीं है, कभी वहां धान गेहूं पैदा होता है और कभी क्या पैदा होने लग गया, अफीम पैदा होने लग गई। खेती को किसी से कोई शिकायत नहीं है, चाहे तुम अफीम पैदा कर लो वहां, चाहे अनाज पैदा कर लो आप, किसी को नशे में डाल दो, किसी का पेट भर लो, वो तो जो प्रकृति का अर्थ बड़ा अच्छा, वैसे प्रकर्षेण कृत, जो आपका किया हुआ है उसको जोर से वापस लौटाती है। बस आप एक बीज डालते हो, 50 बीज बना करके बाहर फेंक देती है। गेहूं का एक दाना डालते हैं, कितने दाने निकलते हैं बाहर? कभी आपने अफीम का पेड़ देखा? पीना नहीं कभी, खाना नहीं कभी, लेकिन उस अफीम के पेड़ का जो दाना होता, बीज जो होता है, आपने देखा होगा, जैसे सावा होता है ना, सावा के समान एकदम बारीक बीज होते हैं। और जब वो इतना बड़ा पेड़ होता है, उसके ऊपर एक फूल सा लगता है, उसमें चीरे मारते हैं, फिर अफीम बनती है। क्या गजब, क्या आप बोलो कि क्या परमात्मा ने नक्शा बनाया है, ऐसा वो फूल लगता है, और उस फूल के अंदर कम से कम मैं सोचता हूं कि 300-400 दाने लगते होंगे उसके अंदर। क्या बनाने वाला क्या बनाता है देख लीजिए आप, वो बता रहा है। क्योंकि सृष्टि जिसने बनाई वो सृष्टि का उपभोग भी बताता है तुम्हें, उपभोग कैसा करना है और इस सृष्टि से बाहर कैसे निकलना है। तो काम क्रोध जो है ना, ये नदी के समान है। काम क्रोध को नहीं रोकना, काम क्रोध के अमर्यादित वेग को रोकना है। भगवान के देखो क्या कृष्ण के वाक्य कैसे हैं, काम क्रोधोद्भवम वेगम, इनसे पैदा होने वाला जो वेग है, कहा जैसे वो नदियां अपनी मर्यादा में बहती हैं तो सारी खेती हरी भरी होती है, आसपास का जल का स्तर ऊपर आ जाता है। जहां नदी बहेगी ना तो आप 10-15 फुट किनारे पे खोदेंगे तो पानी आपको 25-30 फुट पे मिल जाएगा। जिस प्रांत में नदी नहीं बहती वहां 100, राजस्थान में 300-400 फुट गहरा जाना पड़ता है पानी के लिए। गंगा के किनारे 30-35 फुट पे पानी निकल जाता है। इस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो वेग है, इस वेग को रोकना है और इसका आपको उपयोग करना है। ये संसार को हरा भरा करने वाले यही हैं, कौन? काम और क्रोध। हाँ, एक मंत्र है वेद का, सुना देता हूं, कान तुम्हारे पवित्र हो जाएंगे। मन्युर्मन्युमयम देही, वेद के अंदर है, हे परमात्मा थोड़ा क्रोध भी देना। जितनी कीमती चीजें होती हैं उनके ऊपर कवर भी उतना तकड़ा होता है, देखा तुमने? बादाम के ऊपर कितना तकड़ा छिलका लगा रखा है। तो तुम बुद्धिमान हो कि परमात्मा बुद्धिमान है? अखरोट के ऊपर कैसा छिलका लगाया है? बनाने वाले की जरा सोचो तो जरा तुम, क्या दुनिया उसकी कला है, वो सृष्टा है और उसका कहीं हमारे से संबंध है? ये हम नहीं करें, वो कहता है ममय बामसो जीव लोके जीव भूता। एक समर्थ व्यक्ति जब आपको अपना अंश बताता है, इससे पता लगता है कि हमने कहीं अपनी सामर्थ्य को खोया तो नहीं कह सकते, भूल गए हैं, दब गई हमारी सामर्थ्य जो है, दब गई। सोने के ऊपर कितना भी कूड़ा कंकड़ कुछ भी चढ़ जाए, फिर जब जलाते हैं तो, विवेकानंद जी एक दृष्टांत दिया करते हैं, राजयोग में दृष्टांत दिया उन्होंने, एक शेर जो है वो बकरियों के बीच में फंस गया, शेर का बच्चा, वो धीरे 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 अपने को बकरी समझने लग गया। एक बार कोई शेर आया, दोनों किनारे पे पानी पी रहे थे, तो उसने देखा इसकी शकल और मेरी शकल तो एक जैसी है भाई। उसने कहा क्या तू बकरियों के बीच में रहता है मूर्ख? उसने बोला क्या मैं शेर हूं क्या? बोला हां तू शेर तो है। अब जो बकरियां उसका मुंह चाटती थी, एक बारी उसने कहा ऐसा गरज, और जैसे ही वो गरजा तो मुंह चाटने वाली जितनी बकरियां थी सब। इसका अर्थ क्या समझते हो? ये तुम्हारा मुंह चाटने वाली जो इंद्रियां हैं ना, ये सब बकरियां हैं। ये तो सुबह से शाम तक तुम इन्हीं को चटाते रहते हो कुछ ना कुछ, और एक बार जब आवाज कर देते हो फिर ये बकरियां अपने आप जो है ना शांत हो जाती, आपसे डरती हैं, सावधान हो। ये इंद्रियां फिर आपकी सहयोगी बन जाती हैं, दुश्मन नहीं बनती, सहयोगी बनती हैं। इसलिए जब आदमी को बोध होता है तो बोध होने पर यही स्थिति होती है, देहादि नाम असत्यत्वात् यथा स्वप्नो विबोधतः। जैसे जगने के बाद सपने की हालात हो जाते हैं, कोई समझाए न समझाए अपने आप सब झूठा हो जाता। एक बूढ़े आदमी को जवानी झूठी समझनी कितनी कठिन है, बोलो आप। एक बूढ़ा आदमी जवानी को झूठा समझ सकता है, क्योंकि उसने उस जवानी को जिया है, उससे गुजरा है वो। लेकिन आज जैसे जगने के बाद हमारे लिए सपने झूठे हो जाते हैं, ऐसे ही शायद ये भी बूढ़ा एक कोई अच्छी तरह बैठ के विचार करे तो उसके लिए जवानी भी एक सपने के सिवाय और क्या है, बताइए आप। जैसे सपने कभी लौट के नहीं आते, ऐसे जीवन में कभी जवानी नहीं, बचपन भी नहीं आता, गुजरे हुए दिन कभी लौट के आते ही नहीं है। यही तो जीवन की सत्यता है, यही समझना है। चलो आगे क्या बताते हैं, देखो 91 नंबर में उसी का स्पष्ट कर रहे हैं, अलग कोई बात नहीं है इसमें। कर्म जन्मांतरियम यत् प्रारब्धम इति कीर्तितम तत्तु जन्मांतर अभावात् पुंसो नैव अस्ति करहिचित। भगवान शंकराचार्य जरा एकदम शुद्ध वेदांत अभी चल रहा है थोड़ा सा श्लोक के अंदर। कर्म जन्मांतरियम यत् आरब्धम इति कीर्तितम, ये जो प्रारब्ध कर्म जन्मांतर से आ रहा है ऐसा जो बताया गया, क्योंकि जन्मांतर है ही नहीं, जन्म है ही नहीं। जन्म किसका होगा? आपने एक मांडू के कारिका पढ़ी, एक बड़ी अच्छी कारिका है। गौड़पादाचार्य महाराज लिखते हैं, न निरोधो न च उत्पत्तिर न बद्धो न च साधका न मुक्तिर न मुमुक्षु इत्येषा परमार्थता। अरे सपने में कुछ बना ही नहीं, उत्पत्ति हो तो निरोध करने की सोचें, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो, कोई बंधा ही नहीं, न कोई साधक है, ये तो एक सपने का खेल है बस। अब उस खेल में बात इतनी जरूर है कि जगे बगैर इस बात को समझना कठिन है, और जगने का अर्थ होता है परमार्थ की सत्ता में प्रवेश करना। जगना और कुछ नहीं है, जगने का मतलब ही है कि आपका परमार्थ में प्रवेश हो जाए। जब तक परमार्थ में प्रवेश नहीं होता तब तक आदमी जग नहीं सकता। इसलिए बताते हैं, जन्मांतर अभावात् पुंसो नैव अस्ति करहिचित, वो तो है ही नहीं, उसका अभाव है। अच्छा आगे बोलते हैं, देखो स्वप्न देहो या अच्छा यही है ना, बराबर है ना, बराबर है हाँ। स्वप्न देहो यथाध्यस्त तथैवायं हि देहका अध्यस्तस्य कुतो जन्मा जन्माभावे तत्कुतः। बता दिया, रस्सी में दिखने वाला जो सर्प है वो है नहीं तो उसका जन्म कैसे माने? जो वस्तु है नहीं उसका जन्म कैसे माने? अध्यस्तस्य कुतो जन्मा, सपने में आपने कुछ भी देखा हुआ हो लेकिन कुछ न पैदा हुआ, ऐसे ही एक मदालसा का श्लोक आता है, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिव्रजतोसि संसार स्वप्नवत्यज मोह निंद्राम मदाल सावाक्यमुवाच पुत्र। अपने बच्चे को बोलती है वो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। संसार स्वप्नवत् त्यज मोह निंद्राम। संसार एक बड़ा गहरा सपना है और इस सपने में देखो है कितने लोग हमें मिले। आज वो हमारे लिए सब सपने हो गए। पहले स्टेज वहां लगता था, याद है हम लोग वहां पे सबसे पहले यहां हम 84 में आए, वहां लगता था स्टेज। वहां महात्मा बैठते बैठते असली महात्मा वहां बैठ गए। अभी उनको बैठाने में 25 साल लग गए। संसार स्वप्नवत् कितने लोग थे, उन लोगों में से शायद कोई दिखाई नहीं देता है, फिर भी लोग हैं। यही सपना है, बस बता रहे हैं। देखो स्वप्न देहो यथा अध्यस्त। स्वप्न देह जैसा अध्यस्त है। अध्यस्त का मतलब समझते हैं, जो हुआ नहीं लेकिन किसी दोष के कारण दिखाई दे रहा है। हाँ, हुआ तो नहीं है लेकिन किसी दोष के कारण दिख रहा है। और जो हुआ नहीं तो अध्यस्तस्य कुतो जन्मा। जो अध्यस्त है उसका और जन्मा भावे तत्कुतः, और जिसका जन्म नहीं हुआ वो है कहां। तो इसी प्रकार ये जीवन के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो फिर सब धीरे 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 बहुत स्पष्ट होता चला जाता है कि मनुष्य को जो साधन मिले हैं उन साधनों का सम्यक प्रकार से व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। और सांख्य के हिसाब से सृष्टि के उपभोग में भी व्यक्ति को अपने प्रारब्ध का भोग समझना चाहिए, लेकिन सृष्टि के भोग में उलझ करके सृष्टा को नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार से इंद्रियों की तृप्ति सृष्टि के उपभोग से होती है, उसी प्रकार से आत्मदेव की तृप्ति सृष्टा की अनुभूति से होती है। हम सृष्टि का भोग तो करते हैं लेकिन सृष्टा की अनुभूति के लिए प्रयास नहीं करते। आप लोग तो करते हैं, जितने प्रेमपुरी में आते हैं सब करते हैं। ये जो प्रयास हो रहा है सब किसके लिए हो रहा है? और मुझे लगता है सब लोग सृष्टि का आनंद छोड़ के आते हो। आनंद बोलते हैं उसको कि सुख बोलते हैं। सृष्टि का सुख छोड़ के आए हो और सृष्टा का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हो। लेते हो कि नहीं लेते तो रामचंद्र जी जाने। लेकिन उसके आनंद सृष्टा की अनुभूति जब लेकिन सृष्टा की अनुभूति करने के लिए सृष्टि का सुख छोड़ के आना पड़ता है। लेकिन ये प्रेमपुरी भी एक सृष्टि है, आपका घर भी एक सृष्टि है, लेकिन ये सृष्टि यहां की जो सृष्टि है, महाराज जी का जो सानिध्य है, ये सृष्टा की अनुभूति में सहयोगी है। ये श्रेष्ठतम साधन है और उसकी प्राप्ति में ये सहयोगी है। आगे की चर्चा कल करेंगे, 94 नंबर के श्लोक।